मेरे अत्यंत आत्मीय युवा मित्रों नमस्कार। आज 15 नवंबर 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं विक्की चौधरी, आप रांची झारखंड से हैं, और विपिन मिश्रा, आप गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। तो विक्की और विपिन, आप दोनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय में हम लोग RCEP, जिसे आप रीजनल कम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप कहते हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। जहां तक रेडियो न्यूज का सवाल है मित्रों, उसमें कोई खास खबर ऐसी नहीं थी। उनका जो दूसरा रूप है वो हम आरसीईपी में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हाँ, जो G-SET 29 जो हरिकोटा से छोड़ा गया, आंध्र प्रदेश में जो हमारा सेंटर है श्री हरिकोटा, वहां से छोड़ा गया है और उसके जरिए सबसे अभी तक का जो सबसे भारी उपग्रह यान था उसे छोड़ने में भारत ने सफलता प्राप्त की है। एक महत्वपूर्ण खबर है डेफिनेटली, लेकिन सिविल सर्विस की दृष्टि से नहीं, हाँ स्टेट सिविल सर्विस और दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिहाज से यह खबर थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो सकती है। फ्रेंड्स, डीडी न्यूज अगर आप लोगों ने कल देखा हो, जो मैं बार बार आप लोगों को याद दिलाता हूं कि देखना ही चाहिए, तो उसमें आपने जो हमारे पूर्व विदेश सचिव रही हैं शशांक जी, उनकी बातचीत सुनी होगी। मुझे वो बातचीत बहुत परफेक्ट लगी। परफेक्ट इस मायने में लगी, आपको मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी सिंगापुर गए हुए हैं, वो कई सम्मेलनों में भाग लेंगे, संदर्भ यही था, उसमें चीन भी आ रहा है, तो इन सब को लेकर के शशांक जी ने जो भारत की स्थिति की चर्चा की कि भारत को अब क्या करना चाहिए, चीन से किस तरह की प्रतिद्वंदिता है, उसके लिए भारत क्या कर सकता है, उन पर बड़े खूबसूरत तरीके से बताया उन्होंने, और उससे भी बड़ी बात की बड़े सरल तरीके से बताया। अगर आपने सुना हो तो मेरी समझ से आप इसके महत्व को समझ सकते हैं, और अगर नहीं सुना हो तो प्लीज एक बार उसे सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहां बातें बताई जा चुकी हैं, तो यहां उनकी चर्चा करना मैं समझता हूं कि जो स्टूडेंट सुन चुके होंगे उनके समय को नष्ट करना ही होगा। एक खबर दोस्तों, वो श्रीलंका में अभी जो एक संकट पैदा हो गया है सरकार को लेकर के, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार चलता आ रहा है, उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं, क्योंकि श्रीलंका में जो संकट है वो लगभग आप कह लीजिए कि संवैधानिक स्थिति भारत जैसी ही है, और चूंकि श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है इसलिए भी हमारे लिए मायने रखता है। दरअसल हुआ यह था कि वहां पहले से एक सरकार थी, डेमोक्रेटिक सरकार थी, चुनी हुई सरकार थी। वहां के जो राष्ट्रपति हैं, इसको इस तरीके से समझिएगा, अदरवाइज जब घटनाएं आप सुनते हैं ना, पढ़ते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है। वहां के जो अभी राष्ट्रपति हैं वो हैं मैत्रीपाला सिरीसेना। आप सिरीसेना याद रखें, वहां के राष्ट्रपति हैं सिरीसेना, राइट। उन्होंने एक, वहां जो पहले प्रधानमंत्री थे विक्रम सिंघे, इन्होंने भी सरनेम किसे याद रखे, विक्रम सिंघे, उनको बर्खास्त कर दिया राष्ट्रपति ने, उनको बर्खास्त कर दिया ये मानते हुए कि इनको ये अल्पमत में आ गए हैं, और उनकी जगह पर दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जिनका सरनेम है राजपक्षे, राजपक्षे बना दिए गए, राइट। अब देखिए क्या हुआ कि फिर अब सुप्रीम कोर्ट में चले गए। देखिए भारत में भी ऐसा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो राष्ट्रपति का निर्णय था उसे असंवैधानिक करार दिया। असंवैधानिक करार इस मायने में कि किसी को बहुमत, किसी के पास बहुमत है या नहीं है, इसका फैसला सदन में होना चाहिए, राष्ट्रपति को अपने मन से नहीं करना चाहिए, और वो वहां नहीं किया गया था। कुल मिलाकर के ये बात है। आप देखिए कि भारतीय संविधान से ये चीजें एकदम मिलती जुलती हैं। इसके बाद चूंकि अब राष्ट्रपति का जो फैसला था वो असंवैधानिक घोषित हो चुका था, तो फिर से सदन की बैठक हुई, और उस सदन में जो राष्ट्रपति बना दिए गए थे राजपक्षे जी, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया। ये स्थिति है। अब आप जब श्रीलंका की में घटित हुई घटनाओं के बारे में कुछ पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि चीजें आपको बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। पढ़ते समय बस थोड़ा सा भारतीय संविधान को भी ध्यान में रखें, तब आपको जरा भी भटकाव नहीं होगा। मित्रों, एक तूफान की बात हो रही है जो खासकर साउथ में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में आने वाला है। मजेदार बात यह है कि अगर आपने परसों की न्यूज सुनी हो तो उसमें भी गाजा तूफान का नाम था, और कल डीडी न्यूज में भी अगर आपने हिंदी में देखा होगा तो लिखा हुआ भी आ रहा था गजा तूफान, गजा न्यूज बोला भी जा रहा था गजा, जबकि सही मायने में यह है गज। गज का मतलब होता है हाथी, एलिफेंट। तूफान का नाम है गज। जैसे ठीक इससे पहले जो तूफान आया था आंध्र प्रदेश और उधर पश्चिम बंगाल में जो बढ़ गया था उसका नाम था तितली, तो उसी तरह से इसका नाम है गज, एलिफेंट। अब गज को गजा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे दूध को दूधा कहने लगे आप तो गज को गजा, अशोक को जैसे अशोका कहा जाता है, रस को रसा कहा जाता है, ठीक उसी तरह से गज को गजा कह दिया गया। लेकिन गज तो बड़ा जाना पहचाना सा नाम है, हाथी है, हम कहते हैं गजानन और गज शब्द प्रयोग में भी आता है। तो चलिए, वो है गज यानी कि हाथी। एक जो बहुत बड़ा डिसीजन कल लिया गया है फ्रेंड्स सरकार के द्वारा, वो बहुत महत्वपूर्ण है खासकर पर्यटन की दृष्टि से, और वो ये कि भारत ने अब विदेश से जो आने वाले पर्यटक है उनके लिए वीजा ऑन अराइवल नीति की घोषणा कर दी है कि आप भारत के एयरपोर्ट पर उतरिए। कुछ उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं कि ये हमारे एयरपोर्ट होंगे और ये हमारे बंदरगाह होंगे, यहां आप विदेश से आइए और वहीं आपको पहुंचने के बाद वीजा दे दिया जाएगा। हाँ, जो सिक्योरिटी की जो बातें हैं उन सिक्योरिटी का तो ध्यान रखा ही जाएगा, तो इससे डेफिनेटली जो पर्यटन है उसको प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि बहुत से लोग इसीलिए बाहर आना जाना पसंद नहीं करते दूसरे देशों में, क्योंकि वीजा अप्लाई करो, फिर इंटरव्यू दो, कई तरह के चक्कर होते हैं, खर्चा भी उसमें अलग से लगता है। खैर, खर्चा तो जो वीजा के जो चार्जेस होंगे वो आने अराइवल भी होगा, लेकिन कम से कम वो उन संकटों से बच जाएंगे, एक दिमागी परेशानी जो होती है उससे मुक्त हो जाएंगे, और डेफिनेटली इससे पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। ये पर्यटन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट कर लेना चाहिए। एक और खबर है फ्रेंड्स जो कल न्यूज में, डीडी न्यूज में थी, और आज जो हिंदुस्तान का एडिटोरियल, हिंदी का जो हिंदुस्तान है उसका एडिटोरियल भी उस पर है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, और वह है म्यांमार की जो लीडर रही हैं, बड़ी फेमस लीडर रही हैं आंग सान सू की, नाम आपने सुना होगा, इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इनसे वहां की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसने ऑक्सफोर्ड फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड उनको अवार्ड दिया था, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड उसे वापस लेने की घोषणा की है। और इससे पहले जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, विश्व मानव अधिकार आयोग, उसने भी अपना जो अवार्ड उनको दिया था एम्बेसडर ऑफ कॉन्सर्न्स अवार्ड वह वापस ले लिया है। कारण यह है कि आपको मालूम है कि म्यांमार में जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं उनको लेकर के बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है, भारत पर भी रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने का संकट आ गया था कि क्या किया जाए, बांग्लादेश भी उस संकट से जूझ रहा था, तो दुनिया ये मान रही है कि रोहिंग्या शरणार्थी के मामले को म्यांमार सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा है, उसमें वह मानवीय दृष्टिकोण नहीं दिखा रहा है, उन पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में उनसे उनको दिया गया अवार्ड वापस ले लिया गया है। तो मित्रों, ये कुछ छोटी खबरें थी। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, वह है RCEP जिसका फुल फॉर्म है रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इंटरनेशनल रिलेशन के लिए फ्रेंड्स, आपको ध्यान में ये टॉपिक रहना चाहिए, जिसका हिंदी अनुवाद होगा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी। कहीं कहीं आपको साझेदारी की जगह भागीदारी शब्द भी मिल सकता है, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी। देखिए, इससे समझने के लिए आप दो चीज ध्यान में रखें। पहला तो यह है कि आसियान देश हैं जिनमें 10 सदस्य हैं। आसियान यानी कि जो पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के जो 10 देश हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं, वो इसके मेंबर हैं और 10 देश इसके मेंबर हैं। मैप पर आपको इन 10 देशों के बारे में थोड़ा सा जान देख लेना चाहिए कि ये मैप में कहां लोकेटेड है। सब एक ही जगह के आसपास हैं, छोटे छोटे देश हैं। नाम मैं आपको बता देता हूं क्योंकि आसियान संगठन भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि भारत लगातार इनके साथ अपने संबंध बढ़ा रहा है। कल हम लोगों ने इस पर बातें की थी और हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का बहुत बड़ा ये संगठन है, इसलिए हमें जानना ही चाहिए। और एग्जामिनेशन में हमारे पड़ोसी देश और एशिया के जो देश हैं उन पर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे भी जाते हैं। जो 10 देश हैं वह हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो ये आसियान के 10 सदस्य देश है। याद रखिए कि भारत इसका उस तरह से मेंबर नहीं है। इसके बाद इन्हीं में 6 एशिया पैसिफिक के देश हैं, एशिया पैसिफिक के 6 देश हैं। इन 6 देशों को भी ध्यान से सुन लीजिए, नो डाउट चीन और भारत दोनों हैं इसमें। चीन, भारत और जापान, ये तीन तो मतलब बड़े राष्ट्र के। जापान चूंकि इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री है तो आप तीन को बहुत ही महत्वपूर्ण मान सकते हैं। फिर है ऑस्ट्रेलिया, नक्शे में देखिए, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड, ये 6 देश। तो 10 और 6 16, बेसिकली ये 16 देश आपस में मिलकर, मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाना चाह रहे हैं। देखिए जो एशियान देश हैं और इनके बीच में हालांकि पहले से ही एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे हिंदी में आप कहते हैं मुक्त व्यापार समझौता, राइट, मुक्त व्यापार समझौता। तो अब ये चाह रहे हैं कि ये सभी देश आपस में मिलकर के अपने व्यापारिक भागीदारी को बढ़ाएं ताकि इनमें व्यापार बढ़ सके, और अगर ये इसमें सफल हो जाते हैं, जिसकी ज्यादा संभावना है कि सफल हो जाएंगे, तो ये विश्व का आप कह लीजिए कि सबसे बड़ा आर्थिक समूह होगा, ग्लोबल इकोनॉमिक पार्टनर होगा, सबसे बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक पार्टनर का सबसे बड़ा ग्रुप होगा, क्योंकि इनके अंदर लगभग 50% दुनिया की आबादी आ जाती है, 3.4 अरब। अगर 7 अरब आप मान लीजिए, चीन और भारत जैसे दो बड़े देश तो है ही हैं बड़ी आबादी वाले, और साथ ही साथ पूरी दुनिया का जो जीडीपी है, पूरी दुनिया का जो जीडीपी उसका 39% ये 16 देशों के पास है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण आर्थिक संगठन दुनिया का यह बन जाएगा। और चूंकि आप ये देख रहे हैं कि दुनिया में एक अलग किस्म के ट्रेड वार की शुरुआत हो गई है, चाइना और अमेरिका बिल्कुल आमने सामने है, और चाइना को भी अमेरिका के खाली स्थान को भरने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है इस तरह के एग्रीमेंट की, तो चाइना भी अभी एक्टिव हो गया है, और नो डाउट कि भारत के लिए भी यह एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, या पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इस पार्टनरशिप के अंतर्गत तो इकोनॉमिक क्षेत्र की बहुत सी एक्टिविटीज शामिल होंगी, उदाहरण के तौर पर वस्तुओं का व्यापार, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट जिसे आप निवेश कहते हैं, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अगर आपस में कुछ विवाद हो जाएंगे तो उन विवादों का निपटारा, वाणिज्य और लघु और जो मध्यम उद्योग होते हैं, इन सभी क्षेत्रों में सहयोग की बहुत बड़ी संभावना है। तो इस रूप में आप कह सकते हैं कि ये जो RCEP है आने वाले वर्षों के लिए, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इसलिए जब भी इस पर आपको कुछ विशेष रूप से लेख वगैरह पढ़ने को मिलते हैं, प्लीज आप उनसे पॉइंट्स नोट करते चले जाएं। और आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में इस पर एक एडिटोरियल कमेंट भी आया है, वह मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। न्यूज़पेपर्स की एक क्लिपिंग्स बिजनेस स्टैंडर्ड की है, जो खासकर जो खरीफ फसलों को खरीदने के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना की शुरुआत की थी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। उसकी समीक्षा जैसी है, जिसमें उन्होंने ये स्थापित करने की कोशिश की है कि मूलतः यह जो अभियान था वो असफल हो रहा है। तो इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ यह विषय है। और दूसरे और भी मैं क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं मित्रों, आप सब अपने ढंग से देख लीजिएगा। अब मैं आता हूं ईमेल पर। ईमेल लिखने वाले सभी आप मित्रों को धन्यवाद देता हूं। उसमें से एक ईमेल है डॉक्टर नवाज का। डॉक्टर साहब, आप अपना ईमेल खुद पढ़ लें और उसके साथ मेरे इस उत्तर को ऐड कर लें तो आपको उत्तर मिल जाएगा। मैं तीन शब्द केवल प्रयोग में कर सकता हूं, एक कर रहा हूं कि कर सकता है। तो आपने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर इन तीन शब्दों में है, कर सकता है। अन्य कुछ दोस्तों के नाम हैं, गोलू शुक्ला, प्रतीक सिंह ठाणे महाराष्ट्र से, प्रणव राज, फरहा, विनय मौर्य दिल्ली से, रोहित, सुनीला मिंच, राजेंद्र कुमार नायक और काई कोटनिस मुंबई महाराष्ट्र से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।